नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत पश्चिम एशिया संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में सभी पक्षों से तनाव कम करने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य खोलने के लिए ईरान को दी समय सीमा बढ़ाई। ईरान के विद्युत संयंत्रों पर हमले 5 दिन के लिए रोके। ईरान ने कहा, सैन्य योजना बनाने के लिए अमेरिका समय ले रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, रूस भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में सबसे विश्वसनीय साझेदार। भारत का 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य। और पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने न्यायाधीशों पर निजी फायदे के लिए निष्पक्षता से समझौता करने का आरोप लगाया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है। उन्होंने सभी पक्षों से तनाव कम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद देश में ऊर्जा सुरक्षा का कोई संकट नहीं है। श्री मोदी ने लोकसभा में आज पश्चिम एशिया संघर्ष पर बयान में कहा कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्ष की शुरुआत से अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश की सभी एजेंसियां, चाहे वे तटीय सुरक्षा हो, सीमा सुरक्षा हो, साइबर सुरक्षा हो या रणनीतिक प्रतिष्ठान हो, सभी को उच्च सतर्कता पर रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संघर्ष का एकमात्र समाधान संवाद और कूटनीति है।
जहाँ तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है।
सरकार ने आज फिर आश्वासन दिया है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि 50% वाणिज्यिक एलपीजी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध है।
नेचुरल गैस के संबंध में घरेलू उपभोक्ताओं को और सीएनजी ट्रांसपोर्ट के लिए 100% सप्लाई मेंटेन्ड है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स जो ग्रिड पर कनेक्टेड हैं, उनको 80% उनके एवरेज कंजम्पशन का दिया जा रहा है। पिछले 3 हफ्तों में लगभग 3.5 लाख डोमेस्टिक और कमर्शियल पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं। एलपीजी की पैनिक बुकिंग में कमी आई है।
कालाबाजारी और जमाखोरी पर उन्होंने कहा कि करीब 37,000 छापे मारे जा चुके हैं, 550 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और 150 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी 22 जहाज और 600 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 48 घंटों में 34 लोगों को वापस लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इसराइल में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं।
सभी भारतीय नागरिक जो हमारे इसराइल में हैं, वो सुरक्षित हैं। एक भारतीय नागरिक के घायल होने की खबर आई थी। हमारी राजदूतावास वहां पर इस मसले पर नजर रखे हुए। संघर्ष में 6 भारतीय नागरिक की जान गई और 1 भारतीय नागरिक अभी लापता है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य को फिर खोलने के लिए ईरान को दी गई समय सीमा को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 5 दिन तक बिजली संयंत्रों पर हमले नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हाल ही में हुई बातचीत बहुत सकारात्मक रही। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे संघर्ष का पूर्ण और व्यापक समाधान निकल सकता है। उधर ईरान ने अमरीका के साथ बातचीत की संभावना को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव कम करना और संभावित सैन्य योजना के लिए समय हासिल करना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन राजनयिक संकेतों के बावजूद जमीनी स्थिति अस्थिर बनी हुई है।
हालिया घटनाक्रमों से तनाव कम होने की संभावना है, लेकिन संघर्ष का खतरा अभी भी बना हुआ है। अमेरिका के हमलों को टालने का फैसला एक सामरिक विराम का संकेत है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद जारी है। इजरायली सेना लेबनान में अपने अभियान बढ़ा रही है, जबकि खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचे पर मंडरा रहे खतरे क्षेत्रीय स्तर पर तनाव फैलने का जोखिम बढ़ा रहे हैं। वैश्विक तेल बाजारों में हो रही तीव्र प्रतिक्रियाओं के बीच आने वाले दिन तय करेंगे कि कूटनीति से स्थिति स्थिर होती है या पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
अमेरिका की सेना ने हाल ही में किए हवाई हमलों में ईरान के कोम टरबाइन इंजन उत्पादन संयंत्र को नष्ट कर दिया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान इस संयंत्र का उपयोग हमलावर ड्रोन और विमान के पुर्जों के लिए गैस टरबाइन इंजन बनाने में कर रहा था। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पर नष्ट हुए संयंत्र की दो तस्वीरें साझा की। संयुक्त अरब अमीरात ने आज कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान से दागी गई कई मिसाइल और ड्रोन को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। हालांकि सुबह के समय देश के कुछ हिस्सों में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दी। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये आवाजें वायु रक्षा प्रणाली द्वारा मिसाइल को रोकने और नष्ट करने की थी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आज सुबह ताइवान के पास 7 चीनी नौसैनिक जहाजों और 3 सरकारी जहाजों की मौजूदगी का पता चला है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कहा कि उसकी सशस्त्र सेनाओं ने गतिविधि का पता लगाने के लिए लड़ाकू गश्ती विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइल प्रणालियों का इस्तेमाल किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाना है और वो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए रूस को विश्वसनीय साझेदार मानता है। भारत और रूस एक नए द्विपक्षीय कार्यक्रम की दिशा में विषय पर आयोजित सम्मेलन को आज वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि रूस असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है। विदेश मंत्री ने आज शाम नई दिल्ली में खाड़ी सहयोग परिषद देशों के राजदूतों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर विचार विमर्श किया। उन्होंने क्षेत्र में भारतीय समुदाय को निरंतर समर्थन देने के लिए राजदूतों को धन्यवाद दिया। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज देश के न्यायाधीशों पर व्यक्तिगत विशेषाधिकारों के लिए अपनी निष्ठा से समझौता करने का आरोप लगाया। इमरान खान ने कहा कि अदालतों द्वारा उन्हें और उनकी पत्नी को न्याय से वंचित किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक ने ईद के अवसर पर अपने बेटों से फोन पर हुई बातचीत के दौरान ये बातें कही, जिसे बाद में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 जनवरी 2025 को अलकादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जबकि बुशरा बीबी को 7 साल की जेल हुई। आज विश्व मौसम दिवस है। इस वर्ष का विषय है आज का अवलोकन कल की सुरक्षा। ये दिवस विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। WMO की स्थापना 1950 में हुई थी। इसकी महासचिव सेलेस्टे साउलो ने कहा कि प्रत्येक पूर्वानुमान के पीछे लाखों अवलोकन होते हैं। नेपाल में नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति ने अध्यक्ष गगन कुमार थापा का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। श्री थापा ने हाल के चुनाव में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत पश्चिम एशिया संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में सभी पक्षों से तनाव कम करने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य खोलने के लिए ईरान को दी समय सीमा बढ़ाई। ईरान के विद्युत संयंत्रों पर हमले 5 दिन के लिए रोके। ईरान ने कहा, सैन्य योजना बनाने के लिए अमेरिका समय ले रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, रूस भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में सबसे विश्वसनीय साझेदार। भारत का 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।